गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नां अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादिन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय हरे कृष्ण करुणा पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की महती कृपा से श्री श्री राधा रास बिहारी के गोद में बैठकर महाप्रभु के दिव्य लीलाओं पर विचार करेंगे। इस चार दिवसीय गौर कथा के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु के अन्यतम श्रेष्ठतम परिकर श्रीपाद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के मिलन की चर्चा की जाएगी। श्रीपाद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी महाप्रभु से तीन बार मिले हैं। तीन बार मतलब कम समय में नहीं, अधिक समय, लेकिन तीन बार। प्रथम बार बंगाल के राम केलीग्राम में दोनों एक साथ मिले। दूसरे बार श्रीपाद रूप गोस्वामी महाप्रभु के वृंदावन यात्रा से लौटते हुए प्रयागराज में और श्रीपाद सनातन गोस्वामी काशी में। इसके बाद पुनः ये लोग वृंदावन से बारी बारी से आकर पुरी में मिले। तो रूप गोस्वामी लगातार लगभग 10 महीना एक वर्ष पुरी में रहे महाप्रभु के साथ और सनातन गोस्वामी उनके बाद आए और वो भी पुरी में काफ़ी समय तक महाप्रभु के सान्निध्य में रहे और पुरी से लौटने के बाद फिर मिलने का संयोग नहीं बना। महाप्रभु के आज्ञा से श्रीधाम वृंदावन में महाप्रभु के आदेश के पालन करते रहे और श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को इस पृथ्वी पर स्थापित किए। आप सुप्रसिद्ध श्लोक जानते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। ये लालसामयी प्रार्थना है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को इस पृथ्वी पर स्थापित किया वह रूप गोस्वामी क्या कभी हमें अपना चरण कमल देंगे, कभी ऐसा संयोग होगा कि हम श्रीपाद रूप गोस्वामी के चरणों के आश्रय में रहेंगे। और सनातन गोस्वामी के विषय में प्रसिद्ध वाक्य है, श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को जगत में स्थापित करने के वैराग्य युग भक्ति रसम प्रयत्न अपायन माम अनुभिप्स मंदम कृपाम बुद्धिर्य पर दुख दुखी सनातनम तम प्रभु माश्रयामी। श्री सनातन गोस्वामी सदैव वैराग्य युग रहते थे, सभी लोग छह गोस्वामी वैराग्य के साथ रहते थे, लेकिन उस वैराग्य में भक्ति के सुख से सुखी रहते थे। और भक्ति के सुख से सुखी होकर संपूर्ण जगत को भक्ति के सुख का समुद्र बहा दिए, जिसको उसमें गोता लगाना हो लगा सकता है। कृपाम बुधिर यह पर दुख दुखी, कृपा के अम्बुधि बहा दिए, क्यों? दूसरे के दुख से दुखी होकर। महात्मा लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, परोपकारी होते हैं। वह सनातन गोस्वामी हमारे आश्रय हों, मैं उनका आश्रय लेता हूँ। तो इन दोनों महापुरुषों के, भगवत परिकरों के आश्रय में हम चार दिवसीय गौर कथा का स्वादन करेंगे। आज प्रथम दिन महाप्रभु के साथ प्रथम मिलन की चर्चा होगी और कल संक्षेप में द्वितीय मिलन की, और दो दिन बाकी पूरी में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की अलग अलग एक एक दिन चर्चा होगी। तो आप कृपा करके महाप्रभु के कथा श्रवण के लिए उपस्थित हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आपके मन में महाप्रभु के विषय में सुनने की लालसा है। श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्ति का एकमात्र मूल्य है लौल्यम एकम मूल्यम, एकमात्र लालसा। उनको प्राप्त करने के लिए, उनके विषय में जानने के लिए लालसा ही इनकी प्राप्ति का एकमात्र कारण है, एकमात्र क्वालिफिकेशन है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सांसारिक उपलब्धि चाहता है तो उसके लिए प्रयास करता है, उसको कोशिश करना पड़ता है। उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के मन में यदि कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा हो तो यह सबसे बड़ी योग्यता है। लालसा व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो यह बड़ी खुशी की बात है कि आप कृष्ण के विषय में जानना चाहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानना चाहते हैं। करुणा पुरुषोत्तम महाप्रभु अवश्य आप पर कृपा करें, यह हमारी उनके चरणों में प्रार्थना है। और साथ ही आप भक्तों के चरणों में विनीत प्रार्थना है कि आप सहज कृपालु हैं, कृपा करके मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं महाप्रभु की चर्चा ठीक ढंग से कर सकूं। तो प्रथम मिलन की चर्चा मध्य लीला के प्रथम अध्याय में है, प्रथम परिच्छेद में। यद्यपि कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृद्धावस्था में चैतन्य चरितामृत की रचना किए, और आपकी जानकारी के लिए चैतन्य चरितामृत मूल ग्रंथ नहीं है चैतन्य महाप्रभु के लीला के, ये सुप्लीमेंटरी ग्रंथ है। नित्यानंद महाप्रभु के विशेष कृपा पात्र वृंदावन दास ठाकुर, जो साक्षात व्यास देव के अवतार हैं, उन्होंने चैतन्य लीला लिखा, जो चैतन्य भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन नित्यानंद प्रभु के करुणा के प्रवाह में उन्होंने नित्यानंद प्रभु के चरित्र को विशेष रूप से लिख दिया। ग्रंथ बृहद होने लगा तो अति संक्षेप में ग्रंथ पूरा कर दिए, कि बड़ा ग्रंथ कोई पढ़ता नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु को बाद में अभाव खटकने लगी कि जिस उद्देश्य को लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु आए, उनके मैसेज को स्पष्ट रूप नहीं दे पाया वृंदावन दास ठाकुर। तो उन्होंने कृष्णदास कविराज के हृदय में प्रेरणा की, स्वप्नादेश हुआ और सुप्रसिद्ध कवि विद्वान वैष्णव कृष्णदास कविराज बंगाल के प्रसिद्ध कवि थे, विद्वान थे। जब अपने वृद्धावस्था में राधा कुंडाकर भजन करने लगे तो यहाँ के उपस्थित सभी गौड़ीय वैष्णव विशेष रूप में आग्रह करने लगे कि आप महाप्रभु की लीला लिखिए। तो अपनी दैन्यता के कारण वृंदावन दास ठाकुर को क्रॉस नहीं करना चाहते थे, लेकिन विशेष आग्रह पर और स्वयं नित्यानंद प्रभु के आदेश पर एक ग्रंथ लिखना प्रारंभ किए। अत्यंत दैन्य भाव में जिन प्रसंगों को वृंदावन दास ठाकुर लिख चुके हैं उसको लिखने का कोशिश नहीं किए, जो अंश छूट गया है उसी को लिखे हैं। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर का चैतन्य भागवत और कृष्णदास कविराज गोस्वामी का चैतन्य चरितामृत दोनों मिलकर पढ़ने पर चैतन्य चरित पूरा होता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हर समय सशंकित रहते थे कि पता नहीं कब शरीर छूट जाएगा, इसलिए मध्य लीला में ही मध्य लीला और अंत लीला दोनों लीलाओं की सूची तैयार किए हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर के अनुसार संपूर्ण मध्य लीला और तीन भाग में महाप्रभु की लीलाओं को बांटे हैं, तो जिसमें नवदीप लीला को वृंदावन दास ठाकुर ने विस्तार से लिखा है। नवदीप के 24 वर्ष के लीला को विस्तार से लिखा है आदि लीला और मध्य लीला में, और अंत लीला में संन्यास और पूरी के लीलाओं को लिखे हैं। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी संपूर्ण महाप्रभु के लीला काल को तीन भाग में बांटे हैं, तो उसमें आदि लीला में नवदीप लीला लगभग 24 वर्ष के लीला को नवदीप लीला में वर्णन किए हैं आदि लीला को, और मध्य लीला में गमनागमन का वर्णन किए हैं, महाप्रभु की यात्रा दक्षिण भारत वृंदावन गंगा स्थान बंगाल आदि, ये 6 वर्ष महाप्रभु भ्रमण में व्यतीत किए, और उसी क्रम में रथ यात्रा का भी वर्णन हुआ है। कभी महाप्रभु पूरी रुकते थे, कभी दक्षिण भारत, कभी वृंदावन, कभी बंगाल, तो जो घूमने वाली लीला है भ्रमण करने वाली उसको मध्य लीला में स्थान रखते हैं। वो लीला काल है 6 वर्ष, आप मन में जोड़ते रहिए, 24 वर्ष आदि लीला, 6 वर्ष मध्य लीला, और शेष के 18 वर्ष की लीला को अंत लीला में रखते हैं। और पूरी के गंभीरा में महाप्रभु अपने निवास स्थान में अपने अंतरंग परिकर श्रीमती ललिता देवी और विशाखा के अवतार भूत स्वरूप दामोदर और राय रमानंद के साथ अत्यंत गंभीर अवस्था में व्यतीत किए हैं, केवल राधा भाव में रो रो कर व्यतीत किए हैं, वह है अंतलीला। तो इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी के अनुसार 24 वर्ष, लगभग 24 वर्ष मतलब 23 वर्ष 11 महीना नवदीप लीला आदि लीला के रूप में है, और 6 वर्ष मध्य लीला और अंत के 18 वर्ष की लीला अंत लीला के रूप में। तो अभी हम लोग मध्य लीला के प्रथम परिच्छेद के कुछ अंश को, जो रूप सनातन के मिलन के रूप में प्रस्तुत हुआ है, उसको यहाँ पढ़ेंगे। यद्यपि इसी प्रथम परिच्छेद में ही संपूर्ण मध्य लीला को सूत्र रूप में लिख दिए हैं, तो बीच के हम रूप सनातन मिलन को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि महाप्रभु संन्यास के बाद जब पुरी में पहुँचे तो वहाँ उनके विभिन्न परिकरों से भेंट हुआ, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य और स्वरूप आदि कई लोगों से। तो महाप्रभु पुरी जाने के बाद माता के आज्ञा से वहाँ तो रहने का निश्चय कर लिए, लेकिन वृंदावन दर्शन की लालसा इनके मन में बनी रहती थी। सची माँ उनको आदेश दे दी कि बेटा संन्यास ले लिया तो अब घर मत लौटो, लेकिन वृंदावन दूर स्थान में मत रुको। वही श्री कृष्ण पुरी में नीलाचल क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ रहो, बीच में कभी दर्शन कर लेना, लेकिन निवास करना पुरी में, क्योंकि वहाँ से समाचार मिलता रहेगा, कभी गंगा स्नान करने आओगे तो दर्शन कर लूँगी। गंगा स्नान करने मतलब नवदीप नहीं शांतिपुर आते थे अद्वैताचार्य के, हाँ बिल्कुल निकट है नवदीप के। और कभी नवदीप के भक्त पूरी रथ यात्रा में जाएंगे तो उनसे समाचार मिलता रहेगा। तो माता के विशेष आज्ञा से महाप्रभु नीलाचल रहने के लिए प्रतिबद्ध थे, लेकिन वृंदावन की लालसा उनको बार बार प्रभावित कर रहे थे। तो एक दिन महाप्रभु अचानक उठे और कहे हम वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे। तो सभी लोग जो उनके साथ थे वे चलने लगे, अब संख्या के कोई लिमिटेशन नहीं, बहुत लोग चल दिए। तो उसमें एक ब्रह्मचारी थे नृसिंहानंद, जाने वालों के ग्रुप में। तो नृसिंहानंद ब्रह्मचारी उन नवदीप से ही महाप्रभु के परिचित हैं, बड़े शुद्ध वैष्णव थे और मानसिक चिंतन करते थे भगवान की लीलाओं का। तो यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। वृंदावन जावे न प्रभु सुनि नृसिंहानंद, पथ सजाई ल मने पाई आ आनंद। उनको मानसिक चिंतन में बहुत आनंद आता था। तो महाप्रभु चल रहे हैं तो उनके लिए रास्ता होना चाहिए ना, जहाँ तहाँ वो कीर्तन करते हुए चलेंगे और कभी पछाड़ खाकर गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगा, तो उनके लिए स्पेशल पथ होना चाहिए। तो नृसिंहानंद मन ही मन पथ बनाने लगे। कुलिया नगर है ते पथ रत्ने बंधाई ल निभृंत पुष्प सैया ऊपरे पाटिल। मन से बना रहे हैं, कलयुगी लोगों का मन तो बड़ा दूषित है, अच्छा चीज तो सोच ही नहीं सकता। जबकि कलयुग के महात्म में वर्णन है, कलयुग की महिमा दो रूप में कहा गया है। यद्यपि कलयुग दोषों का खजाना है, लेकिन इसमें दो विशेषता है। एक है कि केवल भगवान नाम का उच्चारण करके व्यक्ति समस्त दोषों से मुक्त होकर भगवत धाम प्राप्त कर सकता है, और दूसरी विशेषता है कि कलयुग में मानसिक पाप का काउंटिंग नहीं किया जाता है, लेकिन पुण्य कर्म की काउंटिंग की जाती है। अगर मन से कोई किसी का बुरा या बुरे विषयों का, पाप जनित चीजों का स्मरण करे, सोचे, तो उसको कलयुग के स्टैंडर्ड को देखते हुए माफ कर दिया गया है। प्रायः लोग इसी लेवल के होंगे तो सबको तो नरक नहीं भेजना है। तो एक विशेषता दे दिया गया है कि कलयुग के लोग अगर भगवान के विषय में सोचे तो उसको काउंट कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कैसे रेयर लोग भगवान के विषय में मन में सोचते हैं, बहुत स्टैंडर्ड गिरा हुआ है। महाराज श्री एक उदाहरण देते हैं, उधर बिहार के एक गांव में, उनके गांव के निकट हाईवे निकलता है, हाईवे रोड NH2। तो एक छोटी सी नदी है वहाँ कुदरवा, तो उस नदी पर पुल है हाईवे का। तो उधर एक 86 वर्ष का बूढ़ा, लगभग 86-87 होगा, कम नहीं होगा, 87-88 होगा, उधर बैठकर शाम के समय गर्मी के दिन में लगभग 6-7 बजे ऐसे एक टक उधर पुल के तरफ देख रहा था। तो महाराज उधर नहर के तरफ जप कर रहे थे अकेले, सुनाते हैं। तो जब करते करते देखे कि वो अकेला बूढ़ा बैठा क्या सोच रहा है, सूर्यास्त हो चुका था, सूर्यास्त के बाद भी कुछ प्रकाश बना रहता है, उसी समय लगभग महाराज गए तो कहे आप यहाँ अकेले बैठे हैं, मैं आपको एक घंटा डेढ़ घंटा से देख रहा हूँ, क्या सोच रहे हैं? तो गांव के संबंध में भाई लगता था, बड़े थे, तो कहे कि साधु जी, अब भोजपुरी में बोले उसी टोन में तो कहने में अनुवाद दोबारा करना पड़ेगा, इसलिए मैं अनुवाद ही कर देता हूँ। ये साधु जी, हम यहाँ बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि इस हाईवे पर, जीटी रोड पर दोनों तरफ से ट्रक बस कार इतना तेज रफ्तार में चल रहे हैं, अचानक ये पुल भस जाएगा तो दोनों तरफ से कितने ट्रक, कितने बस, कितने कार गिरेंगे, तो देखने में बड़ा मजा आएगा। तो महाराज कहे कि मैं तो एक मिर्गारी का नाम सुना था, आप तो उसके बाप निकले, वो तो पशुओं को मरने को देखकर अर्ध मरा जीव जब धड़प फड़क करे तबे तो आनंद मोर बढ़े अंतरे। तो वो कहा कि तो महाराज कहे कैसा मजा आएगा, क्या मजा आएगा? तो अरे सब शराब पीकर चलाते हैं, गिर जाएंगे तो उसमें लोग नदी में गिरेंगे और सब छटपटाएंगे, मरेंगे तो मजा आएगा। तो महाराज सिर पकड़ कि वो तो पशुओं के छटपटाने में मजा ले रहा था, आप आदमी के मरने में लेते। तो महाराज थोड़ा सा उसके साथ मजाक किया, अच्छा अगर पश्चिम से आने वाला सासाराम वाली बस में आपका दामाद हो, उनका एक बेटी उधर सासाराम ब्याही गई थी, तो अगर आप गए जेव देखने के लिए ते आपका दामाद छटपटा रहा हो, उसका कमर टूट गया है, तो कैसा मजा आएगा? तो कहे साधु जी ऐसे मत कहें। ऐसा मत कहिए, आप साधु हैं आप ऐसे मत। तो कहे नहीं, आप दूसरे को देखने में तो आपको मजा आ रहा है, लेकिन अपने दामाद को सोचकर आपको बुरा लग रहा है। तो कहने का मतलब कि ये है कलयुगी जीवों की मानसिक स्तर। अब उस 85-86 वर्ष के बूढ़े की एकांत अवस्था में बैठे हुए इतनी निम्न स्तर की मानसिकता हो सकती है? अगर सचमुच को उस पाप को काउंट कर लिया जाए तो सीधे नरक जाएगा, इसलिए माफ है भगवान की तरफ से, कलयुग के लोगों के मानसिक पाप को माफ कर दिया गया। लेकिन अगर कोई सुबह स्नान करके तिलक करके गायत्री करते समय सोच ले कि मैं वृंदावन गया, राधा कुंड जाकर आचमन किया, जय श्री राधे परिक्रमा प्रारंभ किया, गिरिराज जी का कुसुम सरोवर आचमन किया, फिर मानसी गंगा और गोविंद कुंड की ओर चला, गोविंद कुंड आचमन किया, पुछरी के लोटा होते हुए फिर जतिपुरा लौटा, दर्शन करते हुए गोवर्धन बाजार से होकर उद्धव कुंड होते हुए फिर राधा कुंड, जय श्री राधे, जय गिरिराज महाराज की जय। तो यह गिरिराज परिक्रमा का फल दे देगा, लेकिन कितने लोग ऐसा करते हैं? संसारिक लोगों को तो छोड़ दीजिए, वैष्णवों को भी इधर ध्यान नहीं जाता है कि थोड़ा चिंतन भी कर लें, थोड़ा जो जो चीज किए हैं, गिरिराज परिक्रमा किए हैं, मंदिर में आए हैं, मंदिर में आए तो राधा रास बिहारी के दर्शन किए, कहीं ट्रेन में, बस में, यात्रा में या कहीं दूसरे जगह हैं तो वो भी नहीं हो पाता है, और याद भी नहीं रहता कि इस समय मंगला आरती में रहते थे, इस समय दर्शन आरती में, इस समय क्लास होती होगी, कहीं गप में लगे हैं, 8 से 9 बजे रोज क्लास याद आना चाहिए ना, लेकिन मंदिर में ही याद आता है, बाहर नहीं। तो यह है स्तर लोगों का। लेकिन नृसिंहानंद मन ही मन पथ बना रहे थे, तो कुलिया नगर है ते पथ रत्ने बंधाई ल, पूरी से कुलिया ग्राम तक तो रत्न से बनाए। अब पत्थर गटी मन से ही लाना है तो क्यों नहीं हीरा जवाहर और फर्स्ट क्लास सोना चांदी रखा जाए गिटी के जगह पर, और उसके ऊपर पुष्प सैया खूब बढ़िया रत्नों का रोड बनाए। खरीदना तो है नहीं, फिर भी लोग नहीं सोचते। अगर कोई सोचे मन ही मन कि हम 5 लाख दुनिया के वैष्णवों को आमंत्रित करेंगे खिलाने के लिए और खूब फर्स्ट क्लास 56 भोग और 51,000 रुपया दक्षिणा देंगे। लेकिन वो कोई अकाउंट से नहीं जाएगा। फिर भी लोग ऐसा नहीं सोच सकते। तो फिर पथ को खूब बढ़िया पुष्प से सजा रहे हैं। महाप्रभु कीर्तन करने में पछाड़ खाकर गिरेंगे तो चोट लग सकता है ना। अब पथे दुई दिखे पुष्प बकुल श्रेणी और मध्य मध्य दुई पास दिव्य पुष्करणी। बकुल वृक्ष होता है उड़ीसा में या सब जगह है, उसको मोरछली कहते हैं इधर उत्तर प्रदेश में मोरछली। उसमें छोटा छोटा फूल लगता है, बड़ा सुगंधित और हरा रहता है एकदम, बारहों महीना हरा भरा रहता है। उसमें पतझड़ एकाएक नहीं होता है, एक एक पत्ता झड़ता है और निकलता रहता है, इसलिए वो वृक्ष सदैव हरा रहता है। उसको कहते हैं बकुल वृक्ष। आप बकुल वृक्ष देखे होंगे, पूरी में गए होंगे तो हरिदास ठाकुर के भजन स्थली पर है बकुल वृक्ष। तो वहाँ गिरा हुआ बकुल वृक्ष है, फैला हुआ। तो बकुल वृक्ष के हरा हरा पत्ते होते हैं और खूब फूल होते हैं सुगंधित, बड़ा बड़ा वृक्ष होता है। तो दोनों पथ में पुष्प बकुल के वृक्ष लगाए पेड़ के साथ, और इसके साथ दुई पास दोनों रोड के दोनों तरफ पुष्करणी। पुष्करणी मतलब नहर, पानी, पानी और वृक्ष दोनों तरफ। रत्न बांधा घाट ताहे प्रफुल्ल कमल, नाना पक्षी कोलाहल सुधा सम जल। वो गटर का जल नहीं बह रहा था, अमृत जैसा जल बह रहा था, और वृक्ष पर नाना पक्षी कोलाहल कर रहे थे और उस पुष्करणी में कमल खिला हुआ था दोनों तरफ। ऐसा क्यों किए थे, क्यों ऐसा रोड बना रहे हैं? क्योंकि महाप्रभु जिस रोड से चलेंगे वहाँ हवा जो दोनों तरफ से आए, उस हवा की तीन विशेषताएं होनी चाहिए। हवा की तीन विशेषता अच्छी मानी जाती है। एक, मंद हो, बहुत आंधी तूफान ना हो, पेड़ से टकरा कर उसकी गति कम हो जाए। और इसके बाद पुष्करणी का स्पर्श करके शीतलता ले ले, मंद, शीतल और सुगंध, सुगंधित। ये हवा की तीन विशेषता अच्छा माना जाता है। हवा जोर से चले वो अच्छा नहीं मान जाती, और गर्म हवा अच्छा नहीं माना जाता। तो वृक्ष में टकरा कर उसकी गति में कमी आवे, और फिर पुष्करणी में टकरा कर शीतलता और पुष्प कमल का सुगंध लेकर रोड पर आवे, इस दोनों तरफ से। इसलिए रत्न बंधा घाट ताहे प्रफुल्ल कमल, नाना पक्षी कोलाहल सुधा सम जल, अमृत के समान जल। शीतल समीर बहे नाना गंध लैया, कनाई नटशाला पर्यंत लैल बांधिया। पूरी से लेकर कुलिया ग्राम होकर गंगा पार करके कनाई नटशाला तक तो फर्स्ट क्लास रोड बन गया। लेकिन आगे मन नहीं चले, ना पारे बांधीते, पथ बांधा ना जाए नृसिंह हैला विस्मिते। लेकिन अब कनाई नटशाला से पश्चिम बढ़ाना है, बिहार होते हुए उधर भागलपुर से आगे करना है ना, तो बस वहीं तक कनाई नटशाला तक रह गया, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, मन नहीं आगे चल रहा है। तो मन जब आगे मन नहीं बढ़ेगा तो फिर रोड कैसे बनेगा? पथ बांधा ना जाए नृसिंह हिल विस्मित, आश्चर्य में पड़ गए। निश्चय करिया, जब कोशिश किए बार बार जा ही नहीं रहा है मन आगे, तो निश्चय करिया कही सुन भक्तगण, ए बार ना जावे प्रभु श्री वृंदावन। दिए कि निश्चय करके कह दिए, सुन लीजिए इतना भीड़ मचा कर मत जाइए, महाप्रभु वृंदावन जाने वाले नहीं हैं। एक बार ना जावें प्रभु श्री वृंदावन, इस बार नहीं जाएंगे। तो नृसिंहानंद, वही जो मैं वर्णन किया उसी को प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नृसिंहानंद प्रभु ब्रह्मचारी थे, और वे महाप्रभु के कुलिया तक रोड बनाए, बड़े शुद्ध हृदय के थे और मानसिक चिंतन करते थे। प्रभुपाद अवसर पाकर कहते हैं कि भगवान हमारी योग्यता को जानते हैं, हम किस लेवल के हैं। सबके पास धन नहीं है कि सेवा कर सकता है, लेकिन मन से सेवा कर सकता है। मन और ये धन दोनों मटेरियल है, महाप्रभु कह रहे हैं। तो अगर आप सोना चांदी ही देंगे तो भी प्राकृति ही चीज है, तो जब प्राकृत चीज ही देकर सेवा किया जा सकता है तो मन को क्यों नहीं दे रहे हैं। भावग्राही जनार्दन, लंबा टीका लिखे हैं, जनार्दन भावग्राही हैं, उनको भाव पसंद है, उसके लिए चाहे मार्ग वास्तविक रत्नों को बनाया जाए या काल्पनिक रत्नों का, दोनों एक है भगवान के दृष्टि में। सचमुच सोना चांदी लगा दिया जाए चाहे मन से कर दिया जाए, दोनों भगवान के दृष्टि में एक है, बल्कि मन वाला ज्यादा वैलिड है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। आखिर दोनों तो पदार्थ हैं, अतः कोई भी मार्ग चाहे वह स्थूल पदार्थ का हो या सूक्ष्म का, यदि भगवान की सेवा के लिए किया जाए भगवान उसे समान रूप में स्वीकार करते हैं। इसीलिए भगवान हमारे स्टैंडर्ड को देखते हुए कह दिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जानते हैं कि तीन चीज तो पेड़ से मांग दिए, कोई फैक्ट्री का चीज नहीं मांगे हैं, चार में एक भी फैक्ट्री का नहीं है। पत्र पुष्प और फल 75% पेड़ से मांग दिए, और 25% जल सब जगह उपलब्ध है। जानते हैं कि फैक्ट्री वाले बहुत कीमती पैसा लेकर देंगे, लेकिन अब तो दुर्दशा है, पेड़ के समान भी खन तोड़ कर पेड़ से और उस पर भी अपने कंपनी का स्टिकर लगा देते हैं। महाराज श्री सुनाते हैं एकदम सच्ची घटना, कि अमेरिका में एक लड़का 14 वर्ष का लड़का, उससे महाराज पूछे कि एप्पल जानते हो कहाँ से आता है, तो उसको पढ़ा पढ़कर उस कंपनी का नाम बतलाया स्टिकर। तो महाराज कहे कि अरे कैसे बनता है, कंपनी वाले बनाते हैं। अरे कंपनी वाले बनाते हैं, कैसे इसका बनता हुआ देखे हो तुम? नहीं, वो तो कंपनी वाले बनाते होंगे। अच्छा, तो महाराज की और जिज्ञासा हुई तो कहे दूध, फिर से निकाल तो कर दूध डेयरी वाले बनाते हैं, तो वो तो ठीक ही कह रहा था, वो तो बनाते ही हैं, गाय भैंस का कहाँ दूध है। तो अब 14 वर्ष के लड़के को कुछ भी पता नहीं था कि पेड़ से आता है फल, एकदम पता नहीं था। उस कई बार कई तरह से क्वेश्चन करके तो महाराज कहे वो ट्री से आता है। ट्री से आता है? तो अपनी मम्मी से पूछे, मम्मी ट्री से आता है एप्पल? ट्री तो देखा था, लेकिन वो एप्पल का ट्री थोड़े देखा था। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो इस तरह से लोगों की ये स्थिति है, भगवान जानते हैं कि कंपनी वाले बहुत महंगा देंगे, इसलिए पेड़ का कह दिए। लेकिन अब तो ऐसे लोग पेड़ों को भी काटते जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाएंगे, पेड़ नहीं रहने देंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि यो में भक्त्या प्रयक्षति, इसको भी भक्ति के साथ, मतलब भाव के साथ, भाव भक्ति के साथ जो मुझको देता है तब उसको मैं स्वीकार करता हूं। इसमें भक्त्या कहकर भगवान 10-20 रुपया के केला खरीद कर मंदिर में देने के भाव को देखते हैं, क्या दे रहा है, ठीक भाव पूर्वक दे दे, एक फूल भी दे दे तो उनको अच्छा लगेगा, फल भी दे दे। ये अच्छा पद्धति है आज भी भारतवर्ष में, कि मंदिर आने पर लोग फूल और फल लेकर आते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार नरसिंहानंद भगवान के मन से सेवा कर रहे हैं। कनाई नरशाला है ते आशी व फिरिया, इस बार वृंदावन नहीं जाएंगे, कनाई नरशाला से आएंगे। तो सब लोग हंसते थे, इसी तरह कहता है कि जानी बे पश्चात कहिनो निश्चय करिया, मैं तो अभी घोषणा कर दिया, आप लोग बाद में जानेंगे, लेकिन पक्का है कि इस बार वृंदावन नहीं जाएंगे। गोसाई कुलिया हैते चलीला वृंदावन, संग सहस्त्र लोक जत भक्तगण। महाप्रभु चल दिए, सैकड़ों सैकड़ों लोग जा रहे हैं, हजारों लोग। जहां पाए प्रभु तहां कोटि संग लोक, देखी ते आई से देखी खंडे दुख शोक। जहां महाप्रभु जाते थे हजारों हजारों लोग आ जाते थे दर्शन के लिए। कोटि का अर्थ असंख्य भी किया गया है, अनलिमिटेड लोग आते थे।
जहाँ जहाँ प्रभु चरण पड़े चलिते से मृतिका लय लोक गर्त है पथे, जिस जिस रास्ते से महाप्रभु चलते थे कीर्तन करते हुए, महाप्रभु के जाने के बाद उस मिट्टी को लेकर लोग अपने सिर पर लगाते और एकदम पागल हो जाते थे, गिर जाते थे। ऐसे चली आईला प्रभु राम केली ग्राम, गौड़े र निकट ग्राम अति अनुपम। और गौड़ा अध्यक्ष नवाब हुसैन शाह के राजधानी के बिल्कुल निकट, आधा किलोमीटर निकट में है कुलिया ग्राम, ये राम केली ग्राम, वहां महाप्रभु आ गए। तो कहाँ नृत्य करे प्रभु ऐसे अचे प्रेमे अचेतन, कोटि कोटि लोक आई से देखिते चरण, गौड़ेश्वर जवन राजा प्रभाव सुनिया, कहिते लागी ल किछु विस्मित हैया। तो एकदम एक किलोमीटर दूर पर महाप्रभु आ चुके हैं, जिनको देखने के लिए करोड़ों करोड़ों लोग, असंख्य लोग आ रहे हैं। और महाप्रभु कभी अचेतन होकर गिर जाते हैं बेहोश होकर, यह संवाद नवाब हुसैन शाह को भी मिल गया कि एक हिंदू सन्यासी चल रहा है, उसके लोग उसके साथ असंख्य लोग चल रहे हैं, बहुत भीड़ भाड़ है, हिंदुओं का महारैला चल रहा है जुलूस। तो गौड़ेश्वर जवन राजा प्रभाव सुनिया, वो मुसलमान शासक था, कही ते लागी ल किछु विस्मित हैया। बिना दान बिना दाने जत लोग जार पाछे होए, सही तो गोसाइया यह जानी व निश्चय। जिसके पीछे इतने लोग बिना मूल्य के बिना वेतन के चल रहे हैं, वह निश्चित रूप से कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई इसमें तो कोई पैगंबर है, कोई विशेष व्यक्ति है। तो अब उसके मन में आ रहा है नवाब हुसैन शाह का कि कहीं काजी स्टेप न ले ले। प्रभुपाद लिखते हैं कि काजी मतलब उस समय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम, तो लोकल डीएम जो होगा वो कहीं उस पर कड़ा न ले ले। इसलिए काजी जवन यह ना करिया इंसान आपन इच्छाए बोलूं जहां उहार मन, कोई बड़ा व्यक्ति है ना, तब ना लाखों लोग उसके पीछे चल रहे हैं। तो घूमता हुआ आ रहा है, किसी का कुछ तो बिगाड़ नहीं रहा है, उसका एक्शन भी पता है कि कीर्तन करते हुए जा रहा है, तो जाने दिया जाए, डीएम को मना करते हैं। तो एक क्षत्रिय को बुलाया, केशव नामक क्षत्रिय था नवाब हुसैन शाह। केशव क्षत्रिय राजा वार्ता पूछी ल, प्रभु र महिमा क्षत्रिय उड़ाइया दिल। तो केशव क्षत्रिय से पूछा नवाब कि आप सुने एक सन्यासी आया है, उसके साथ लाखों लोग चल रहे हैं। केशव तो एकदम घबरा गए, बाप रे ये तो कुछ गड़बड़ करेगा। तब झूठ बोलते हुए कहते हैं, भिखारी सन्यासी करे तीर्थ पर्यटन, तारे देखिवारे ऐसे दुई चारी जन। वो तो भिकमंगा सन्यासी है, उसके साथ दो चार लोग चल रहे हैं, कीर्तन करता है, तमाशा देखने के लिए आ जाते हैं, इतना भीड़ नहीं है। और जवन तुम्हार ठाई करे लगानी, तार हिंसा लाभ नहीं है आर हानि। नहीं नहीं, उस पर कोई विचार करने वाला चीज नहीं है, वो तो ऐसे मांगता खाता जा रहा है तीर्थ यात्रा करने, तीर्थ पर्यटन करने, उस पर कुछ विचार करना नहीं ठीक नहीं है, उसके प्रति हिंसा या उसको अरेस्ट करना ये सब ठीक नहीं है। एक कह दिया। और फिर तो अच्छा अच्छा मैं तो सुना बहुत लोग हैं, तो ना ना ऐसी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वो क्षत्रिय घर आकर सोचने लगा कि बाप रे अभी जाकर उनको सूचना देना चाहिए, नहीं तो रात के बाद सुबह तो देख लेगा भीड़, तो विश्वास थोड़े करेगा हमारी बात पर। अब घरे आसी तो अब इसके बाद वो क्षत्रिय राजा रे प्रबोधी के सब ब्राह्मण पठाइया, चली बारे तरे प्रभु पठाइल कहिला। एक पत्र लिख कर दिया एक ब्राह्मण के द्वारा कि जल्दी जाकर सूचना दो, रात रात में यहाँ से भाग जाए। वो केशव अपने बुद्धि लगाया कि ब्राह्मण को भेजवा कर एक सूचना दिलवा दिया कि रात भर में निकल जाए, नहीं तो नवाब जान गया है एक्शन ले लेगा। आ तब तक दबीर खास साकर मलिक दबीर खास नवाब हुसैन शाह के वरिष्ठ मंत्री हैं। दबीर खास जो बाद में रूप गोस्वामी, जिनके दो विभाग था, पूरा वित्त मंत्रालय और फाइनेंस अरुण जेटली जैसा अधिकार था रूप गोस्वामी का, और सनातन गोस्वामी का भी दो पद, सुप्रीम जज और प्राइम मिनिस्टर, दो दो पद संभालते थे सबसे वरिष्ठ, इसलिए उनको साकर मलिक कहता था, सेकेंड मालिक राजा के बाद, साकर मलिक सनातन गोस्वामी थे, छोटा मालिक राजा के बाद, वो बड़ा मालिक था ये छोटा मालिक थे सनातन गोस्वामी, बड़े भाई थे इसलिए प्राइम मिनिस्टर थे। तो दबीर खासे राजा पूछिल निभृते, दबीर खास को बुला लिया, गोसाई महिमा ताहो कही कही लागी लग कही थे, तो दबीर खास तो छिपाए नहीं, कहने लगे साफ साफ, जे तुम्हार राज दिला, जे तुम्हार गोसाई, तुम्हार देशे तुम्हार भागे जन्मिला आसिया। कहते हैं कि जे तुम्हार राज दिला, जे तुम्हार गोसाइया, तुम्हार देशे तुम्हार भागे जन्मिला आसिया, जिसके कृपा से आपको ये राज प्राप्त हुआ है, वही आपके सौभाग्य से आपके देश में पधार रहे हैं, आ गए हैं। तुम्हार मंगल वांछे कार सिद्ध है, इहार आशीर्वादे तुम्हार सर्व ते जय। कहते हैं आपके मंगल की कामना, आपकी कार्य सिद्धि इसी में है, उन्हीं के आशीर्वाद से आपको सब जगह विजय प्राप्त हो सकेगा, उन पर किसी भी प्रकार का एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। मोरे के न पूछा तुम्ही, पूछा अपन मन, तुम्ही नाराधीप है वो विष्णु अंश सम, हमसे क्यों पूछ रहे हैं, आप अपने आत्मा से मन से तो पूछिए ना, आप नाराधीप हैं, आप राजा हैं, आप विष्णु अंश हैं। कोई भी शासक भगवत अंश से ही शासन कर सकता है, भगवान की परसेंटेज चाहे दो जो हो, दो हो, चार हो, दस हो, बीस हो, लेकिन है भगवत अंश, उन्हीं की शक्ति ही शासन कर सकती है। ब्रह्मा और शिव शासन नहीं करते, जगत का पालन स्वयं विष्णु करते हैं, तो जहां भी पालन का अधिकार किसी को मिलता है वो विष्णु के प्रतिनिधि माने गए हैं हमारे वैदिक साहित्य में। तुम ही नाराधीप हो विष्णु अंश सम, तुमार चीते चैतन्य रो कैसे है ज्ञान, तुमार चीते जेई लय से ही तो प्रमाण, आपके चित्त में उस चैतन्य कृष्ण स्वामी के प्रति क्या विचार है, जो विचार उस सन्यासी के प्रति आपके मन में है वही प्रमाण है, आप बताइए क्या सोच रहे हैं। वो तो एकदम कंप्लीट भगवत पार्षद थे, उनको ये पता था कि ये क्या कीट पतंग बिगाड़ पाएगा उनका, इसके बस के बात है, वो ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुत हिला से ही, इनको तो कंप्लीट विश्वास था, वो केशव क्षत्रिय नहीं थे ना। राजा कहे सुन मोर मने जयी लय, साक्षात ईश्वर यह नाही का संशय। नवाब हुसैन सा करे मेरे मन में तो आ रहा है कि वो साक्षात ईश्वर है, ए तो कही राजा गेला निज अभ्यंतरे, तबे दबीर खास आईला अपन आर घरे। तो राजा कहे ठीक है चलिए विश्राम किया जाए, हमको तो लग रहा है साक्षात ईश्वर है, हाँ हाँ यही। तो आए रूप गोस्वामी अपने घर दबीर खास, और घरे आसी दुई भाई जुकुती करिया, प्रभु देखिरवार चले बेश लुकाइया। दोनों भाई चलते थे तो रथ पर चलते थे, हाथी घोड़ा पर चलते थे, पालकी पर चलते थे, लेकिन अब रात को अपना बेश छिपा कर, अब बेश का दाढ़ी सेविंग नहीं किए, बाकी जो राजसी पोशाक है उसको हटा कर और बॉडी गार्ड रथ घोड़ा ये सब छोड़कर, और रात्रि में जब इतना निकट 1 किलोमीटर आ गए हैं तो चलिए मिल लिया जाए, दोनों भाई निर्णय लिए। अर्धरात्रि दुई भाई आइला प्रभु स्थाने, प्रथमे मिलीला नित्यानंद हरिदास सने। तो आए महाप्रभु के स्थान में तो गेट पर ही मिल गए नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। तारा दुई जन जनाइला प्रभु रो गोचरे, रूप साकर मलिक आइला तुमार देखिवारे। तो ये दोनों जाकर प्रणाम किए हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को, और नित्यानंद प्रभु लेकर महाप्रभु के पास आए और कहे कि आपको देखने के लिए नवाब हुसैन शाह का प्राइम मिनिस्टर आया है साकर मलिक, आपसे मिलने के लिए आइला तुमार साकर मलिक आइला तुमार देखिवारे। नाम तो साकर मलिक दबीर खास से दोनों आए हैं, तो महाप्रभु आश्चर्य में देख रहे हैं। दुई गुच्छ तीर्ण दुई दशन धरिया गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हैया, जो पगड़ी था उसको उतारे और दांत में दूब लेकर, ये दैन्यता का बोधक है, दांत में तीर्ण दबा करके महाप्रभु के सामने दंडवत प्रणाम किए, लौट गए। दैन्य रोदन करे आनंद विह्वल, प्रभु कहे उठो उठो है ल मंगल। दोनों प्रणाम किए तो महाप्रभु कहे उठिए उठिए, आपका मंगल हो, कल्याणम मस्तु, एकदम उठा लिए। दुई उठी दुई भाई तबे दंत तीर्ण धरी, दन्य करी स्तुति करे कर जोड़ करी। दोनों भाई उठ गए, स्पीकर रूप गोस्वामी हैं, बोल रहे जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय पतित पावन जय जय महाशय, नीच जाति नीच संगी करी नीच काज, तुम्हार अग्रेते प्रभु कहिते वासिलाज। कहते हैं जय हो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, परम दयालु त्राता पतित पावन, आपकी जय हो। हम नीच जाति नीच संगी और नीच काम करने वाले, आपके आगे बैठने में संकोच हो रहा है, लज्जा लग रही है। श्रील प्रभुपाद इस प्यार पर लिखते हैं कि साकर मलिक और दबीर खास ए रूप सनातन, दबीर खास रूप और सनातन साकर मलिक दोनों भाई अपने निम्न कुल में उत्पन्न होने को कहते नीच जाति, अति सम्मानित ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, सारस्वत कुल दक्षिणात्य ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश मुसलमानी नौकरी में होने के कारण, उनके रीति रिवाज संस्कार का पालन करने के कारण अपने को नीच जाति कह रहे हैं। जाति शब्द जन्म का सूचक होता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जन्म तीन प्रकार का होता है। प्रभुपाद कहते हैं पहला माता के गर्भ से, दूसरा संगति से संस्कार से, और तीसरा दीक्षा से। तो दूसरे श्रेणी वाली जाति कह रहे हैं, हम संस्कार हमारा गलत हो गया है। सातवें स्कंद में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी वर्ण में होता है, वह शास्त्रों में उल्लिखित विशेष लक्षणों के द्वारा पहचाना जाता है। तो दबीर खास और साकर मलिक दोनों ब्राह्मण जाति के थे, लेकिन वे मुसलमानों के यहाँ नौकर थे, अतः वे उनकी मूल आदतें गिरकर मुसलमान जैसी बन गई थी संस्कार, उनमें ब्राह्मण संस्कृति के लक्षण नहीं थे, इसलिए अपने को नीच जाति कह रहे हैं। भक्ति रत्नाकर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दबीर खास और साकर मलिक नीच जाति के लोगों के साथ रहते थे, इसलिए अपने को ब्राह्मण कहने में संकोच कर रहे हैं। कैसे ब्राह्मण कहेंगे, तो ब्राह्मण और द्विज बंधु शब्द है, पतित ब्राह्मण को द्विज बंधु कहते हैं, तो द्विज बंधु न कह करके नीच कह दिए, दोनों एक ही है नीच या द्विज बंधु। मत्तुलो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन, परिहारे पिलज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तम। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी श्लोक लिखते हैं, तो इसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ उद्धृत कर रहे हैं कि मेरे समान पापी और अपराधी कोई नहीं है, हे पुरुषोत्तम मैं और क्या कहूँ, मेरे दोस्त को क्षमा कीजिए, इस प्रकार की प्रार्थना करने में भी मुझको लज्जा आ रही है। इतना पापी हैं कि अपने पाप का काउंटिंग करने में संकोच हो रहा है, क्या क्या पाप करता हूँ, और प्लस पाप क्षमा कीजिए यह कहने में भी संकोच हो रहा है। क्षमा करने लायक पाप नहीं है, बहुत पाप है, लेकिन कुछ तो आशा लेकर आए हैं कि आपके यहाँ मार्जन हो जाएगा। हे पतित पावन, हमने ऐसा सुना है कि आप पतितों के उद्धार के लिए अवतार लिए हैं। पतितो पावन हेतु तुमार अवतार, आमा भई जगते पतित नहीं यार। रूप गोस्वामी श्री पदावली एक ग्रंथ संग्रह किए हैं, सारा श्लोक उनकी रचना नहीं है लेकिन कलेक्ट किए हैं, एक ग्रंथ है श्री पदावली, तो उसमें रूप गोस्वामी एक श्लोक उद्धृत करते हैं, अज्ञात लेखक का है, नाम नहीं दे पाए, तो उसमें लिखते हैं कि वो भक्त कहता है कि हे प्रभु, जब मैं आपका नाम सुनता हूँ भक्त वत्सल, तो हमारा कलेजा कांप उठता है कि आप हैं भक्त वत्सल और हम में भक्ति का लेश भी नहीं है, तो हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा। लेकिन जब मैं सुनता हूँ कि आप दीन बंधु पतित पावन हैं, तब तो उछल जाता हूँ, मेरा नंबर सबसे ऊपर रहेगा। जब दीन बंधु पतित पावन, तो पतितों की लिस्टिंग आप करने लगेंगे तब तो मेरा नंबर आ ही जाएगा, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। और जहाँ नामनामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति श्लोक की व्याख्या में लिखा गया है कि भगवान के सभी नाम जिसको जो प्रिय हो, पतित पावन, दीन बंधु या जो भी पापी से पापी लोगों का उद्धार करने वाला नाम आप जोड़ लीजिए, अघारी, बकारी, कंसारी, ऐसे पापियों को भी जो उद्धार कर सकते हैं, तो जो नाम आपको प्रिय लगे वो नाम आप उच्चारण कर सकते हैं, सारे नामों में वही दिव्य शक्ति है, कोई एक दो नाम फिक्स नहीं है, इतनी बड़ी कृपा, सभी नामों में आपने अपनी शक्ति भर दी, और फिर उसके जपने का उच्चारण करने का भी कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, टाइमिंग नहीं, इतनी बड़ी कृपा, लेकिन हाय रे मेरा दुर्भाग्य कि इतना सब सुविधा के बाद भी उसमें कोई रुचि नहीं है। महाप्रभु भक्तों की ओर से अपना दैन्य व्यक्त किए हैं, महाप्रभु का ये पोजीशन नहीं है। तो आमा वही जगते पतित नहीं हार, आप पतित पावन है, पतित के उद्धार के लिए अवतार लिए हैं, मैंने ऐसा सुना है कि तो हमारे से बढ़कर कोई पतित नहीं है, और कोई पतित नहीं है, तो वहां सभी लोग चकित होकर कहने लगे, अरे सुना नहीं है क्या जगाई मधाई का उद्धार हुआ। तो कहते हैं, जगाई मधाई दुई करी ले उधार, ताहा उधारी त्रिश्रम नाही लो तुम्हार। हमने सुना है कि जगाई मधाई का उद्धार आप किए हैं, लेकिन उसमें आपका पतित पावनत्व तो नहीं खर्च हुआ है, उसमें कोई श्रम नहीं हुआ है, कोई परिश्रम नहीं हुआ है, क्यों? इतने व्यभिचारी, इतने शराबी थे, पापी थे, इतना ब्राह्मण जाति तारा नवदीप घर, नीच सेवा नहीं करे नहीं नीचे रह कुरपर। ब्राह्मण वंश में जन्म लिए थे, और कहाँ लिए थे? जहाँ आप लिए हैं, नवदीप में, नवदीप धाम में उनका जन्म हुआ था, और हमारे जैसे नीच की सेवा नहीं करते थे, नीच की नौकरी नहीं करते थे। कुरपर का अर्थ है पीछे पीछे चलना, जब किंकर के जगह पर कुरपर, जो कहे बस उसकी फ्लेटरी करते हुए, कुत्ते की तरह पूंछ नहीं डुलाते थे जैसे हम डुला रहे। सबे एक दोष है, सबे एक दोष तार है पापाचार, हम स्वीकार करते हैं उनमें दोष था, पापाचार करते थे, शराब पीते थे, मांस खाते थे, पापाचार था, लेकिन पाप राशि दहे नामा भाषे ही तुम्हार, लेकिन राशि राशि के पाप, पहाड़ जैसे पाप भी आपके नामा भास से समाप्त हो जाता है। तीन प्रकार के नाम उच्चारण होता है, नामा भास, नामापराध और शुद्ध नाम। तो नामा भास भी जमपास को काट सकता है, अजामिल पख्यान में आप सुन चुके हैं, नारायण बेटे का नाम पुकारने से नरक से बच गया अजामिल। और नामापराध जाम में फंसा देता है, निकले तो बड़ा टाइम से लेकिन जाम में फंस गए, वो न गंतव्य पर पहुंच पाते हैं टाइम से, न इधर रहे न उधर, नरक भी नहीं जाते हैं लेकिन बैकुंठ भी नहीं जाते, जाम में रह जाते हैं। इसलिए जाम में फंसने वालों को जो दुख की अनुभूति होती है, वैसा ही अनुभूति करके इस जाम से निकलना चाहिए नाम अपराध से, तो शुद्ध नाम जप करने पर भगवत धाम जा सकते हैं। बस संक्षेप में तीनों की परिभाषा। तो सबे एक दोषदार है पापाचार, अगर पापाचार उनका दोष है तो पाप राशि दहे नामा भाषे तुम्हार, आपके नामा भाष से पाप राशि समाप्त हो जाता है। तो क्या पाप नामा भाष क्या, तो तुम्हार नाम लिया तुम्हार करी लनिंदन से ही नाम लैला तार मुक्ति र कारण, आपके नाम ले लेकर आपका निंदा करते थे। चैतन्य मंगल में, चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि जगाई मधाई रात को शराब पीकर अर्ध रात्रि को जब निकलते थे श्रीवास जी के गली से, तो उधर मृदंग का टोन में कीर्तन सुनाई देता था, जगा निमाई पंडित जागरण कर रहा है, देखो क्या खोल का आवाज है, दोनों हड़िया लेकर नाचते थे उसी दरवाजे पर, और कहते थे जब से आया है गया से तब से सारे ब्राह्मणों को पागल बना दिया निमाई, पहले ठीक था लेकिन बाप मर गया कोई ऊपर कंट्रोलर नहीं है, अभी निमाई बहुत अच्छा था पंडित था लेकिन अब केवल नचनिया हो गया। तो इस तरह के कह कह कर निमाई निमाई जगन्नाथ का बेटा निमाई ये सब नाम तो बोलते थे। तो इस प्रकार इनका पाप का पहाड़ तो उसी समय खत्म हो गया। से ही नाम है लतार मुक्ति र कारण, जगाई मधाई है ते कोटि कोटि गुण, अधम पतित पापी आमी दुई जन, उनमें तो करोड़ों गुण है, हम सबसे पापी हम ही हैं। म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवी करी म्लेच्छ कर्म, गो ब्राह्मण द्रोही संगे हमारा संगम, अपने विषय में कह रहे हैं। म्लेच्छ जाति क्यों कह रहे हैं, क्योंकि म्लेच्छ का संस्कार हो गया है, वही शराब पीना मांस खाना गो मांस। कुछ लोग प्रश्न कर देते हैं कि यार रूप सनातन स्वामी भी गाय का मांस खाते थे? हाँ खाते थे ना, उस अपना हुक्का जूठा पिलाया था, मांस साथ में बैठा कर खिलाता था, जैसा खाता था वैसा खिलाता था। तो मांसाहारी की संगति में रहने के कारण में म्लेच्छ जाति अपने को कह रहे हैं। म्लेच्छ से भी केवल खाना तक ही सीमित नहीं था, उसकी सेवा करते थे, करी म्लेच्छ कर्म, और गाय काटने वाला जो कानून बनता था इन्हीं के साइन से पास होता था, तो कर्म भी करते थे, गो वध के लिए कसाई चलाते हैं। कहते हैं वैसे ही आज भी इस समय भारतवर्ष में, प्रभुपाद कहते हैं, ऊंच पदों पर तथा कथित ब्राह्मण आसीन है किंतु फिर भी राज्य की ओर से गो वध के लिए कसाई खाने चलाते हैं। वैदिक सभ्यता के विरुद्ध प्रचार होता है, वैदिक सभ्यता का पहला सिद्धांत है मांसाहार और मद्यपान से दूर रहना, किंतु इस समय भारत में मद्यपान और मांसाहार का प्रोत्साहन किया जा रहा है, और इस राज्य को चलाने वाले तथा कथित विद्वान ब्राह्मण भी होते हैं, उसी प्रकार श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी द्वारा किए गए मापदंड के अनुसार उपतित हो गए हैं। वो लोग अपने को जब म्लेच्छ सेवी म्लेच्छ जाति म्लेच्छ संगी कह रहे हैं, तो उनके मापदंड के अनुसार आज के सभी ब्राह्मण ऐसे ही नीच हैं जो ऐसे अफसर बनकर साइन करते हैं। सनातन गोस्वामी द्वारा दिए गए मापदंड के अनुसार ये पतित हैं। ये तथा कथित ब्राह्मण अच्छा वेतन पाने के लिए इन कसाई घरों की स्वीकृति प्रदान करते हैं और ऐसे जघन्य कार्यों का प्रतिरोध नहीं करते। इस तरह वैदिक सभ्यता के सिद्धांतों की अवमानना एवं गो वध का समर्थन करने के कारण वे म्लेच्छों और जौनों के पद को प्राप्त हो चुके हैं, इसीलिए अपने को ये म्लेच्छ सेवी कह रहे हैं। राजा या राष्ट्रपति को भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए। जब महाराज युधिष्ठिर ने भारतवर्ष का शासन संभाला तो उन्होंने भीष्म देव और भगवान कृष्ण जैसे महापुरुषों की स्वीकृति प्राप्त की। इस तरह वे धार्मिक नियमों के अनुसार समूचे भारत पर शासन करते रहे, किंतु इस समय राज्य के अध्यक्ष धार्मिक नियमों की परवाह नहीं करते। यदि अधार्मिक लोग किसी बात पर चाहे वह शास्त्रों के नियम विरुद्ध क्यों न हो, मतदान करते हैं तो तब वह बिल पास हो जाता है। ऐसे जघन्य कार्यों से सहमत होकर राष्ट्रपति तथा राज्य के अध्यक्ष पाप के भागी बनते हैं। सनातन तथा रूप गोस्वामी ने अपने को ऐसे ही कार्यों के लिए दोषी मान रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने पर भी अपने अपनी गिनती मलेच्छों में कर रहे हैं। आगे कहते हैं, मोर कर्म मोर हाथे गलाय बांधिया कु विषय विष्टा करते दिया छे फेलिया। अपना कर्म अपने हाथ से अपने गला को बांधा है, कु विषय के गर्त में फेंक दिया है। तो इस पर भी प्रभुपाद जी का लंबा टीका है। तो है कि नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड, अमृत बलिया जे बिखाए, नाना जोनी सदा फिरे कदर या भक्षण करे, तार जन्म अध पात जाए। जान बुझ कर जो इस तरह से विविध प्रकार के कुविषयों के चक्कर में पड़ता है, कर्म कांड में जघन्य दोष पाप उच्च लोक प्राप्ति के लिए पशुओं का वध आदि, ये ठीक नहीं है। इसे भवबंधन से उद्धार नहीं होता है। तो फिर आगे कहते हैं, नाना जोनी सदा फिरे कदर या भक्षण करे, तार जन्म अध पाते जाए। तो इस प्रकार के विषयी लोग जो संसार में रहते हैं, विषय भोग करने वाले, उनके द्वारा किसी को कृष्ण भावना में विकास की संभावना नहीं है। जब हिरण्यकश्यपु पूछता है प्रहलाद महाराज से कि तुम कहां से ये सब सीख लिए हो, तो कहते हैं कि इस जनरल समाज में सब शिक्षाएं नहीं होती है। मति न कृष्णे परत सतोवा, मति अपने से या दूसरे के संसारिक लोगों के सिखाने से, परत का अर्थ है जो संसार के विषय भोग भोग रहे हैं। मिथो विपद्येत गृह व्रतानम, जो घर गृहस्थी में विषय भोग में लगे हुए इंद्रिय तर्पण में, आदांत गोभीर विषताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वाणानम, जो एक ही विषय को बार बार इंजॉय करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के संगति में मति कृष्ण में नहीं लगती है। तब प्रश्न होता है कि तब कैसे लगती है, तब महापुरुषों के चरणों में जब जाकर उनके आश्रय में उनसे सुनते हैं, उनके चरण रज का अभिषेक करते हैं, तब मति लगती है। लेकिन संजोग की बात कि हिरण्यकश्यपु पूछ ही नहीं पाया कि तुम किस महापुरुष के चरण में गया, नहीं पूछ पाया, भुलवा दिए उसको, इनडायरेक्ट बतलाए। तो कहते हैं, वही प्रभु आमा उधारिते बोली नाही त्रिभुवने, पति तो पावन तुम्ही सबे तुम अभिने। हे प्रभु, इस त्रिभुवन में हमारा उद्धार करने वाला कोई नहीं है, आपके अतिरिक्त कोई नहीं है ऐसा पतित पावन जो हमारा उद्धार कर सके। आमा उधारिया यदि देखाओ निज बल, पतित पावन नाम तबे तो सफल। चुनौती दे दिए कि यदि हमारे उद्धार में अपने पतित पावनत्व का खर्च करेंगे, बल लगाएंगे, तब सारा संसार पक्का मुहर लगा देगा कि आप पतित पावन है, एकदम पक्का। पतित पावन नाम तबे तो सफल। सत्य एक बात कहूं सुना दया मय, मो बिन दयाल पात्र जगत है ना है। प्रभु एकदम रियली हृदय से हम कह रहे हैं कि हमसे बढ़कर दया का पात्र कोई नहीं है, कोई नहीं है। सत्य एक बात कहो सुन दया मय, मो बिन दयाल पात्र जगत है न होय। मोरे दया करी कर स्वदया सफल, अखिल ब्रह्मांड देखो तुम्हार दया बल। प्रभु हमारा उद्धार करके अपने दया को सफल कर लीजिए, सारा जगत में सूचना फैल जाए कि आप हमारा भी उद्धार कर लिए। अखिल ब्रह्मांड देखो तुम्हार दया बल, सारा संसार आपके दया बल को देख ले। नम्रषा परमार्थ में परमार्थे व में शृणु विज्ञापन में कमग्रतः, यदि में न दैष्ये तदा दर्शनीय स्तवनाथ दुर्लभ। कहते हैं कि न मिशा परमार्थ मेव में, हे नाथ आपके सामने आपके आगे मेरी एक प्रार्थना है, उसको सुनिए, यह मिथ्या नहीं है, बिल्कुल सत्य मैं कह रहा हूं, बिल्कुल सत्य है। वह यह है कि यदि आप मुझ पर दया नहीं करेंगे तो फिर आपको मेरे जैसे दया का पात्र मिलना दुर्लभ हो जाएगा, आप तरसने लगेंगे, कोई नहीं ऐसा दयालु मिलेगा, कोई ऐसा पतित नहीं मिलेगा, हमारे जैसे दया पात्र कोई नहीं मिलेगा, आपके लिए कठिन हो जाएगा। इतना कह रहे हैं तो मन में आ गया कि महाप्रभु को तो एक सेकंड का काम है, अपने समाज में दाखिल कर लेंगे, लेकिन क्या मेरा योग्यता है? इतना तो लंबी इच्छा कर लिया लेकिन क्वालिफिकेशन? तब अपने स्थिति को देखकर फिर कहते हैं, बहुत बड़े विद्वान थे रूप सनातन, कहते हैं अपने अयोग्य देखे मने पाऊं क्षोभ, तथापि तुम्हार गुणे उपजाए लोभ। किसी अच्छे स्कूल में, किसी अच्छे सोसाइटी में एडमिशन के लिए टेस्ट होता है, योग्यता होनी चाहिए ना, तो तुम हमारे समाज में रहने लायक है? अपने को इतना पतित कह रहे हो, हमारा समाज देख रहे हो, कोई है तुम्हारे जैसा? कहते हैं हाँ यही तो बात है, अपने अयोग्य देखी मने पाऊं क्षोभ, मेरी योग्यता नहीं है कि हम गौर परिकर हो जाएं, तथापि तुम्हारे गुणे उपजाए लोभ, लेकिन मन में यही लोभ है कि हम भी गौर कृष्णदास हो जाएं, हम भी गौर परिकर हो जाएं, तथापि तुम्हार गुणे उपजाए लोभ, मन में लोभ उत्पन्न हो रहा है। बामन जैसे चांद धरिते चाह करे, तैसे वंछा मोर उठे अंतरे। जैसे बामना छोटा व्यक्ति आकाश में स्थित चंद्रमा को छूना चाहता है, असंभव, 7 फुट का जवान नहीं छू सकता, बामना क्या छुएगा। तैसे वंछा मोर उठे अंतरे, वैसे ही मन में वांछा उठ रहा है कि हम आपके परिकर हो जाते। भवंत मेवानुचर निरंतर, प्रशांत निशेष मनोरथांतर, तदाह मय कांतिक नित्य किंकर, प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितम्। कह रहे हैं कि हे नाथ, समस्त वासनाओं को छोड़कर आपका एकांतिक किंकर होकर सेवा करते करते मैं कब सनाथ जीवन का आनंद लूंगा? मन में यही आ रहा है कि मैं संपूर्ण जीवन आपकी सेवा करूं, अर्थात नाथ युक्त होकर कब आनंदित होऊंगा? इस समय अनाथ हूं, कब सनाथ कर देंगे? प्रहर्ष इष्यामि सनाथ जीवितम्, अपने नाथ के साथ, अपने स्वामी के साथ कब जीवित होऊंगा? भवंत मेवानुचर निरंतर, प्रशांत निशेष मनोरथांतर, कदाह मैं कांतिक नित्य किंकर, प्रहर्ष इष्यामि सनाथ जीवितम्। कब ऐसा दिन आएगा कि हम आपके परिकर होकर रहेंगे, पूरा जीवन केवल आपके साथ रहेंगे? इस समय मुसलमान के सेवक हैं, और ठीक इसके विपरीत मैं आपके परिकर होने की इच्छा है। यह श्लोक यमुनाचार्य का है, स्तोत्र रत्नावली से। तो इतना जब महाप्रभु के समक्ष रूप गोस्वामी अपनी स्थिति को प्रस्तुत किए रखे, तब महाप्रभु का उद्गार सुनिए। सुनी महाप्रभु कहे सुनत दबीर खास, तुमी दुई भाई मोर पुरातन दास। हे दबीर खास, यहाँ दबीर खास जब संबोधन किए तो इससे लग रहा था कि स्पीकर दबीर खास ही थे, रूप गोस्वामी ये सब बातें बोल रहे हैं, दोनों एक बार एक साथ कैसे बोलेंगे? सनातन गोस्वामी चुप थे, रूप गोस्वामी बोल रहे थे, संबोधन कर रहे हैं। सुनी महाप्रभु कहे सुना दबीर खास, तुमी दुई भाई मोर पुरातन दास। तुम मेरे पुराने, पहले से मेरे सेवक हो। आजी है ते दुहार नाम रूप सनातन, दैन छाड़ तुम्हार दैन फाटे मोर मन। बस कोई टाइमिंग नहीं, अर्धरात्रि में 1 बजे रात में, दाढ़ी वाढ़ी भी सेविंग नहीं है, वही मुसलमान वेश है, तुरंत इनिशिएशन। आज है ते तुम्हार नाम रूप सनातन, दबीर खास का नाम रूप और साकर मलिक का सनातन। दैन छाड़ो, ये दैन्यता छोड़ो, तुम्हारे दैन से मेरा छाती फट रहा है। तो इस पर भी प्रभुपाद लिखते हैं कि दीक्षा के द्वारा वैष्णव का नाम चेंज कर दिया जाता है। कहते शंख चक्र ऊर्ध्वपूर्णा धारणा अध्यात्म लक्षणम तन्नाम करणम चैव वैष्णव तत्त्वम् होच्यते। दीक्षा के बाद कुछ वैष्णव शंख का चिन्ह, चक्र का चिन्ह धारण करते हैं, ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण करते हैं और नाम उनका बदल जाता है, तब वैष्णव कहे जाते हैं। तो वैष्णव चिन्ह के लक्षण है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में श्लोक है। तो सहजिया संप्रदाय के लोग अपना नाम नहीं बदलते, वही पुराना नाम रहता है। दीक्षा के बाद भी यदि नाम नहीं बदला जाता तो इसका अर्थ कि उनकी देहात्म बुद्धि नहीं गई। तो उसका ये फलाना नाम, फलाना सिंह, फलाना पंडित, फलाना जाति, वो रही गया, तो इससे उनकी शुद्धि नहीं मानी जाती। तो महाप्रभु कहते हैं दैन पत्री लिखी मोरे पठाई लो बार बार, से ही पत्री द्वारा जानी तुम्हारो व्यवहार। आप दैन पत्री ब्राह्मणों के द्वारा मुझे पहले भी भिजवाए हो, उससे ही हम आप लोगों का व्यवहार जान गए। तुम्हारो हृदय आमी जानी पत्री द्वारे तुम्हारा सिखाई थे श्लोक पठाई लो तुम्हारे। तो आप लोगों के पत्र के जवाब में मैं साहित्य का एक श्लोक लिखा था सूत्र रूप में। पर व्यसननी नारी व्यग्रापी गृह कर्मसु तदेवा स्वाद अत्यंत नवसंग रसायनम। मैं साहित्य का एक श्लोक लिखा था कि पर पुरुष में आसक्त रहने वाली स्त्री अपने घर के काम धंधों में लगी रहती है, फिर भी पर पुरुष के अस्वादनीय नव संगम सुख को मन ही मन स्वादन करती रहती है। ठीक से घर के कामों करती है ताकि घर वालों को न शंका हो कि इसका मन कहीं दूसरे जगह भी है, लेकिन मौका देखती है घर के लोगों को धोखा देकर वो वहाँ मिलती है। तो ये मैं लिखा था पत्र में, इसका क्या भाव है? इस साहित्य के असल महाप्रभु कभी कभी अजीब बात बोल देते थे, किसी को समझ में नहीं आता था। अजीब अजीब श्लोक बोलते थे साहित्य दर्पण का, तो कहीं कहीं का एकदम बेढंगा सुनने में लगेगा क्यों ऐसा बोल रहे हैं, माथा पेची कर करके बहुत कम लोग समझ पाते थे। स्वरूप दामोदर पूरी में तो समझने वालों में सबसे टॉप थे, स्वरूप दामोदर राय रामानंद रूप गोस्वामी, बाकी किसी को समझ में नहीं आता था। तो यह इसका भाव यह है कि अभी तुम लोग राजा के नौकर हो, लेकिन मौका खोजो मुझसे मिलने के लिए, अभी मैं पर हूं। तो गौड़ निकट, अब देखिए महाप्रभु अपना ओपिनियन एकदम क्लियर कर रहे हैं। गौड़ निकट आईते आसीते नाही मोर प्रयोजन, तोमा दुहा देखते मोर यहाँ आगमन। यहाँ गौड़ आने का मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, वृंदावन के रास्ता में नहीं है। वृंदावन आने के लिए चलना है पश्चिम तरफ, तो पूरब क्यों जाना है बंगाल में? तोमा दुहा देखते मोर यहाँ आगमन, तुम दोनों को देखने के लिए मिलने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। यही मोर मनेर कथा क्यों नहीं जाने, सभे बोले केन आइल राम के लिए ग्रामे। सब सोच रहे हैं, कनाफूसी कर रहे हैं कि इधर क्यों महाप्रभु जा रहे हैं। उधर जब पूरी से चलना है तो झारखंड होते हुए बनारस की तरफ आ जाए, या चाहे उधर छत्तीसगढ़ होते हुए इधर आना चाहिए ना, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करना चाहिए, तो उल्टा बंगाल में जा रहे हैं, यहाँ क्यों आ गए? तो सब अपने मन में खाना फूसी कर रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है। भाल है ल दुई भाई आई ल मोर स्थाने, बहुत अच्छा हुआ आप लोग आ गए, नहीं तो कल राजधानी में पहुंच गया होता, बहुत अच्छा हुआ। घरे जहाँ भय किछु ना करी है मने, आप लौटिए भय मत कुछ कीजिए। जन्मे जन्मे तुमी दुई किंकर आमार, उल्टी बातें कैसे कर रहे हैं? घर जाइए और जन्मे जन्मे तुम ही दुई किंकर आमार, जन्म जन्मांतर से आप मेरे सेवक हो, लेकिन घर जाओ। क्या बात है, किंकर है तो अपने साथ रखिए ना। कहते हैं अचिराते कृष्ण तुमार करिबेन उद्धार, बहुत शीघ्र कृष्ण आपका उद्धार करेंगे। अपने को कृष्ण नहीं कहते हैं, कृष्ण उद्धार करेंगे। आप लोग जाओ, यही बलि दुहार सिरे धरिल दुई हाथे, दुई भाई प्रभु पदे नील निज माथे। दोनों भाइयों के सिर पर अपना हाथ रखे, लेकिन हाथ रखने से संतोष थोड़े हुआ, दोनों नीचे चरण में गिरे और चरण अपने सिर पर रख लिए। तो दोहा आलिंगिया प्रभु बलिल भक्तगणे, सभे कृपा करी उधारी ये दुई जने। महाप्रभु उनको आलिंगन किए और सारे भक्तों को नित्यानंद प्रभु हरिदास आदि सबको कहे कि आप लोग कृपा करके इनका उद्धार कीजिए। सभी वैष्णव दुई जने प्रभुर कृपा देखी भक्तगणे, हरि हरि बोले सबे आनंदित मने। सारे भक्त देख रहे हैं महाप्रभु की विशेष कृपा पात्र इन दोनों को, सभी भक्त आनंद में बोल रहे हैं निताई गौर हरि बो, हरि हरि बोले सबे आनंदित मने। प्रभुपाद लिखते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए, भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए वैष्णव की कृपा अनिवार्य है। वैष्णव के सेवा के बिना किसी का उद्धार संभव नहीं हो। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तारक पेछे केवा, गुरु शिष्य का उद्धार करने के लिए उसे दीक्षा देते हैं, और यदि शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करता है और अन्य वैष्णव का अपमान नहीं करता तो उसका मार्ग निष्कंटक हो जाता है। वैष्णव किसी की उन्नति से ईर्ष्या नहीं करता, सारे वैष्णव खुश हैं कि ये लोग प्रगति कर रहे हैं। सच्चा वैष्णव जो अत्यधिक हर्षित होता है, जो व्यक्ति वैष्णव की सफलता से ईर्ष्या करता है, वह निश्चित रूप से वैष्णव नहीं होता, अपितु समान संसारिक व्यक्ति होता है। भला कोई वैष्णव दूसरे वैष्णव से आध्यात्मिक प्रगति में या भगवान नाम फैलाने में जो सफल हुआ उसे ईर्ष्या क्यों करेगा? प्रभुपाद प्रश्न कर रहे हैं। असली वैष्णव तो दूसरे वैष्णव से अत्यधिक प्रसन्न रहता है जो भगवान की कृपा प्रदान करता है। वैष्णव लोग भी उपेक्षा करते हैं, लेकिन निंदक का, सबका नहीं। और उपेक्षा का मतलब होता है परवाह न करना, वो क्या बोल रहा है क्या कह रहा है इसकी परवाह न करना। प्रभुपाद क्लियर किया है, इस्यालु व्यक्ति की उपेक्षा की जानी चाहिए। प्रचारक का कर्तव्य है कि भगवान से प्रेम करे। ईश्वरे तद्धीनेशु बाल शिशु दुष्टि चो, कृपा मैत्री प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करो तिश मध्यम। तो वही श्लोक का अर्थ करते हैं कि वह भगवान से प्रेम करता है, वैष्णव से मैत्री करता है, अबोध पर कृपा करता है, और जो ईर्ष्यालु है उनसे तटस्थ रहता है, बहिष्कार करता है। तो नित्यानंद हरिदास श्रीवास गदाधर मुकुंद जगदानंद मुरारी बक्रेश्वर महंतों का नाम ले रहे हैं कृष्णदास कविराज। ये लोग बड़े बड़े लोग, नित्यानंद हरिदास श्रीवास गदाधर मुकुंद जगदानंद मुरारी बक्रेश्वर, सवार चरण धरी पड़े दुई भाई, सबे बले धन्य तुम्हें पाई लो गोसाई। सबके चरण पकड़ रहे हैं, सब लोग उनको छाती से लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं आप लोग सफल जीवन है, आप लोग गोस्वामी को प्राप्त किए, आप महाप्रभु की कृपा प्राप्त किए। तो सबा पास आज्ञा मांगी चलन समय, प्रभु पदे कहे किछु करी या विनय। सबसे आज्ञा लेकर अब चलते समय महाप्रभु के पास दबीर खास साकर मलिक रूप सनातन गए और अब बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी। इहा होते चल प्रभु इहा नहीं काज, यद्यपि तुम्हारी भक्ति करे गौड़राज। प्रभु आप यहां से अब चलिए जल्दी, जितना जल्दी हो इस क्षेत्र से निकल जाइए। यद्यपि ये गौड़राज नवाब हुसैन शाह आपकी भक्ति करता है, तथापि जवन जाति ना करो प्रतीति, तीर्थ यात्राएं ये तो संगत भाल न है रीति। फिर भी मुसलमान विश्वास के पात्र नहीं है, है आखिर नवाब तो मुसलमान ना। तो कहते तथापि जवन जाति ना करो प्रतीति, फिर भी यद्यपि तुम्हार भक्ति करे गौड़राज, गौड़राज नवाब हुसैन शाह आपकी भक्ति करता है, आपके विरोध में नहीं है, मतलब वो भी आपको ईश्वर मानता है, फिर भी वो विश्वास का पात्र नहीं क्योंकि मुसलमान है। तथापि जौन जाति ना करे प्रतीति, 500 वर्ष पहले सनातन गोस्वामी का ये अनुभव है। तीर्थ यात्रा ये संगत भाल नहीं रीति, और तीर्थ यात्रा का ये रीति नहीं है इतना भीड़ भाल ले जाना, जार संगे चले यही लोक लक्ष्य कोटि, वृंदावन यात्रा ये नहे परिपाटी, लाखों लोग साथ में लेकर चलना ये वृंदावन यात्रा की परिपाटी नहीं है। फिर भी कह रहे हैं यद्यपि वस्तुतः प्रभु किछु नहीं भय, यद्यपि आपके लिए कोई भय की बात नहीं है, आप स्वतंत्र ईश्वर है, तथापि लौकिक लीला लोक चेष्टा में आए, फिर भी आप ईश्वरता प्रकट करने के लिए नहीं आए हैं ना, आप भक्त रूप में आए हैं, इसलिए आपकी चेष्टा लौकिक लीला होनी चाहिए। तथापि लौकिक लीला लोक चेष्टा में आए, भगवान होते हुए भी जब मनुष्य रूप में आप लीला करते हैं तो मनुष्योचित व्यवहार होना चाहिए, या भक्तों के प्रति विशेष कृपा करके आप लीला करते हैं तो आपकी लीला तो मानव समाज के लिए शिक्षा प्रद होनी चाहिए, लोक चेष्टामय होना चाहिए, लोगों के अनुसार होना चाहिए, मानवीय चेष्टा होनी चाहिए। ए तो बोली चरण बंदी गेला दुई जन, प्रभु से ही ग्राम होते चलित ही लमन, तो महाप्रभु को प्रणाम करके दोनों चले गए। अनुग्रहाय भूताना मानुषम देहमाश्रित, भजते तादृशी कीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत। महाराज सुनाने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान भगवान होते हुए मनुष्य रूप में जब लीला करते हैं, जिसने व्यवहार संबंध तो मनुष्य समाज को शिक्षा देने के लिए। अनुग्रहाय भूतानाम या अनुग्रहाय भक्तानाम, पाठ भेद है, अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहमाश्रित, मनुष्य शरीर में आते हैं और वैसे ही चेष्टा करते हैं, भजते तादृशी कीड़ा वैसी लीला करते हैं, जा श्रुत्वा तत्परो भवेत, जिसको सुनकर भक्त लोग उसमें आसक्त हो जाए। या भगवान श्री राम के विषय में भी कहा गया कि केवल मर्त्यावतारस्तु मर्त शिक्षणम रक्षो बधायै न केवलम विभो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य रूप में आकर भगवान मनुष्य समाज को शिक्षा दिए, केवल राक्षसों को वध करने नहीं आए, कैसे बेटा होना चाहिए तो श्री राम की तरह, शिष्य होना चाहिए श्री राम की तरह, आदर्श लेकर आए, राजा होना चाहिए श्री राम की तरह। तो इस प्रकार इतना कहकर सनातन गोस्वामी उनके चरणों में प्रणाम किए और चले गए। जब चले गए तो महाप्रभु सुबह में उठे, प्रातः चली आईला प्रभु, प्रभु से ही ग्राम होते चली तो हिला मन, भोर में ही चल दिए, प्रातः तो कनाई नटशाला पहुंच गए। प्रातः चली आईला प्रभु कनाई नटशाला, देखी ला सकल तहा कृष्ण चरित लीला, वहां पेंटिंग किया हुआ था कृष्ण चरित का, लिखते हैं प्रभुपाद, उसको आज हरि सभा कहते हैं बंगाल में, पहले नाटशाला कहा जाता था, कनाई नटशाला कृष्ण का। कहीं कहीं पर जहाँ नाटशाला का अर्थ यह भी है, कनाई माने कृष्ण, नाटशाला माने लीला, लीला करने का स्थल, तो इसलिए लीलाओं का प्रदर्शन भी होता था। तो महाप्रभु वहाँ गए और जाकर वहाँ रुके एक दिन। सही रात्रे प्रभु ताहा चिंते मने मन, संगे संघट भाल नहे कैला सनातन। तो यहां देखिए स्पष्ट यहां हो गया कि सनातन गोस्वामी कहे थे, कहने कि सही रात्रे प्रभु सोच रहे हैं मने मन कि सनातन हमको चलते समय कहा है कि इतने लोगों के साथ नहीं यात्रा करनी चाहिए, मथुरा जाइब आमी एत लोक संगे, किछु सुख ना पाइबे हबे रस भंगे। प्रभुपाद लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी पुष्टि कर रहे हैं कि इतने लोगों के साथ वृंदावन जैसे पवित्र स्थान की यात्रा करना केवल शांति भंग करना है। इस तरह से पवित्र स्थानों में जाने से उन्हें इच्छित सुख नहीं प्राप्त हो पाएगा। प्रभुपाद भी लिखते हैं कि कुछ लोग व्यवसायी लोग ले जाते हैं यात्रा पैसा के लिए, लेकिन भक्त लोग सुख आस्वादन के लिए जाते हैं। तो महाप्रभु मन ही मन सोच रहे हैं कि ना, ऐसे लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए। एकाकी जाइब कि वह संगे एक जन, जाऊंगा तो कोई मुश्किल से एक व्यक्ति को साथ ले जाऊंगा। तबे तो शोभा वृंदावन रगमन, तब वृंदावन की शोभा होगी यात्रा। ये तो चिंती प्रातः काल गंगा स्नान करी, सुबह में कनाई नरशाला में गंगा बहुत सुंदर है, वहां गंगा स्नान किए आ नीला चले जाब बली चलीला गौर हरी, हो गया वृंदावन की यात्रा। सुबह में स्नान किए, कहे कि इस बार वृंदावन नहीं जाएंगे इतने लोगों के साथ, अब नीला चले जाब बली चलीला गौर हरी, मुड़ गए वहां से, तब अब नृसिंहानंद की बात तो सही निकल, यही बार प्रभु ना जावे वृंदावन। तो इस प्रकार वहां से चलकर शांतिपुर आए, और शांतिपुर में 5-7 दिन रहे, एक सप्ताह। सची माँ वहां आकर उनसे मिली, 7 दिन अपने हाथ से भोजन बनाकर महाप्रभु को खिलाई, और वहां पर गौड़ीय वैष्णवों को जो गौड़ देश के थे उनको महाप्रभु सुख दिए। इसके बाद गंगा स्नान करके 7 दिन गंगा का स्वादन किए। बलभद्र भट्टाचार्य आर दामोदर पंडित दामोदर दुई संगे प्रभु आइला श्री नीलाचल। बलभद्र भट्टाचार्य और दामोदर पंडित, बाकी सबको कह दिया आप रुकिए रथ यात्रा में आना, 2 लोगों को साथ ले, सारा भीड़ बंगाल में ही रोक दिए, इधर ही रहिए। बलभद्र भट्टाचार्य और पंडित दामोदर दुई जने संगे प्रभु आइला नीलाचल। ठीक है, हरे कृष्णा। तो प्रथम मिलन हो गया, अब कल दूसरा मिलन सुनेंगे। हरे कृष्णा, जय।